ஓம் சாந்தி. குட் மார்னிங். பியாரே பாப் தாதா நே இஸ் யஜ்ய கோ சலானே கி கித்தனி சுந்தர் சிஸ்டம் ஸ்தாபித் கி ஹுயி ஹை. யஜ்மானா ஹி சதா ரோனக் லகி ரஹே ஹெட்குவார்ட்டர் பே. खूब सवंती के प्रोग्राम चलते रहे तो बाप दादा के टाइम से, दादियों के टाइम से ये जोन सिस्टम बना, जिसमें जोन वाइज जो अपने भारत के 14 जोन हैं उनका कोई ना कोई इस 11 टर्न में किसी में दो जोन किसी में एक जोन सब एकत्रित होते हैं. क्या निशानी है कि भगवान अभी भी पालना कर रहा है और प्रैक्टिकल में मधुबन में आके बच्चों को खूब उनकी अच्छी तरह से परवरिश करता है. उसकी क्या निशानी है, क्या निशानी है? जैसे बाप दादा आते थे शुरू में गुलजार दादी के तन में काफी टाइम 18 तक तो आते रहे ना, 17-18, तो जो माहौल उस वक्त होता था, जैसे 20,000 गैदरिंग हो जाती थी, डायमंड हॉल पूरा भर जाता था और पिन ड्रॉप साइलेंस मुरली हो के टाइम पे कितना जबरदस्त प्रवाह होता था. सेम आज भी वैसा ही प्रवाह, वैसी गैदरिंग, वैसा ही उमंग उत्साह और वैसी खुशी सबके अंदर वो लहर छाई होती है ना? उस वक्त जाज मुरली में बाबा ने कहा ना, संशय बुद्धि विनश्यन्ति. हाँ, जिसके मन में ये हो वीडियो चल रही है, बाबा थोड़ी आया है, तो ये बुद्धि में संशय हुआ तो फिर उसको अनुभूति कम होती है. लेकिन जिसको पक्का निश्चय होता है कि भगवान आए बैठे हैं, स्वयं भगवान सुना रहे हैं इस वक्त बाबा बच्चों को, तो सचमुच आम मुरली सुनते हैं लेकिन वो बाप दादा मिलन की मुरली सुनने के लिए ही दौड़े दौड़े सब तरफ से भाई बहन आते हैं, क्योंकि वो प्रवाह ऐसा जबरदस्त होता है और कुछ बाबा की एक्स्ट्रा पावर, वो तो सर्वशक्तिवान है ना, हजारों भक्तों को एक ही टाइम पे अनुभव करा सकता है, तो बाबा अपने बच्चों को क्या नहीं कर सकते. उस वक्त इतनी सुंदर अनुभूति में खोए होते हैं सब कि पाना था सो पा लिया. मैं देखा बाप दादा के महावाक्य जब सुन रहे थे पूरी मुरली में, आप नोट करना, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, कितना सब सब क्योंकि इसी नशे में बैठे होते हैं ना, भगवान सन्मुख बैठा है, भगवान सुना रहा है, मैं आत्मा सुन रही हूं, कितना नशा चढ़ता है उस वक्त. सच बताएं शुरू से हम 77 से ज्ञान में चले तो बाबा की एक मिलन की बात सुनाऊं. उस वक्त शुरू में ओम शांति भवन में आते थे, इवन हम तो मेडिटेशन हॉल में भी जो पांडव भवन में है ना, उसमें तो 200-300 की भट्टी होती है, आजकल 200-300 ही उसमें आते थे, उसमें भी बाप दादा का पदरामणी हुई थी, मिले थे. परंतु ओम शांति भवन की बात सुनाता हूं कि बाबा ने उन दिनों में, बाबा रात को कभी 12 बजे जाते, कभी 1 भी बज जाता, कभी कितना बज जाता, तो रात भर साथ में या तो शिलू बहन जी बैठते थे या मोहिनी बहन जी, शिलू दीदी या मोहिनी दीदी, इन दोनों में से मोहिनी दीदी जो मुन्नी दीदी के साथ दादी कॉटेज वाले, तो मेरे को हर वर्ष चले कमाल है भगवान। और उस वक्त क्या होता था, छोटे छोटे ग्रुप आते थे, समझो पार्टी आई करनाल की या कहीं और की, जोधपुर की, वो बाबा के सामने आके बैठती थी। बाबा सबके लिए पहले सामूहिक, पहले तो पावरफुल दृष्टि, फिर सामूहिक वरदान, फिर एक एक को अलग अलग वरदान, और उसको टोली मिलती थी। आप सोचो वो दिन भी क्या जबरदस्त थे। तो मेरे मन में ये आया कि कमाल है भगवान धरती पे आया, और हम रोज हम सन्मुख मिलते हैं, उसके महावाक्य सुनते हैं, कम से कम भगवान से कुछ बातचीत तो करें। परंतु बाबा का प्रवाह इतना पावरफुल होता था, इतना शक्तिशाली होता था कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई बात कर। वो सामने जाते वो भी शरीर को भूल जाता था, अशरीर ही हो जाता था। किया होगा ना किस किस ने बाप दादा से डायरेक्ट दृष्टि सामने पहुंच के लिए, ऊपर स्टेज पे हाथ खड़ा करो, किस किस ने लिए, खड़े हो जाओ अपने स्थान पे, देखें कितने भाग्यशाली। मतलब बाप दादा की पदरामणी देखना एक अलग बात, लेकिन सन्मुख दृष्टि लिए देखो कितने थोड़े हैं, 10-12, चलो इनके भाग्य के लिए ताली बजाओ। तो बाबा इतना प्रवाह तेज होता था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कुछ बोले, और मैं भी हर बार सोच के जाता था बाबा से कुछ बात करूंगा, लेकिन बाबा जब इतनी शक्तिशाली दृष्टि देते थे तो दे ही भूल जाते थे, और क्या बात करनी है कुछ भी नहीं याद रहता था, बस बिल्कुल बाद में पश्चाताप होता, आखिर कब करेंगे भगवान से। एक बार मैं पक्की प्लानिंग करके गया, मैं कि आज कुछ हो जाए मैंने बाबा से बात करनी है, और बात क्या करनी है वो भी मैं प्लानिंग करके गया कि मैं बाबा से पूछूंगा कि बाबा इस वर्ष मैं क्या चार्ट रखूं। तो ये भी प्लानिंग करके गया कि बाबा जब दृष्टि देंगे उस वक्त हम सब एकदम हिप्नोटाइज हो जाते हैं ना, जैसे देह भूल जाते, परंतु मैं आज ये अंदर चिंतन करता रहूंगा कि मुझे पूछना है बाबा इस वर्ष क्या चार्ट रखना है। तो शीलू बहन जी साथ बैठे थे, बाबा की मुरली पूरी हुई, फिर उस पार्टी का मिलना शुरू हुआ। जब हमारी पार्टी का नंबर आया तो बाबा ने पहले तो पावरफुल दृष्टि दी, उसके बाद बाबा वरदान दिया, और मैं तो वही रिवाइज कर रहा था कि भाई अब की बार मिस नहीं करना, मैंने पूछना है बाबा से। तो बाबा ने जैसे ही कहा, अधिकारी आत्माएं हो, अधिकारी सदा अधिकारी, तो बड़े शक्तिशाली बाबा, बाबा तो वो अधिकारी पे सुना रहे थे, अधिकारी आत्माएं हो, अधिकारी हो ना सदा अधिकारी। तो मैं बीच में कहा, बाबा चार्ट क्या रखना है। तो बाबा मुस्कुराए, बाबा तो जाने जाना नार थे कि ये आज बात करने के चक्कर में ऊपर से शीलू बैठा तो हमारा घर। और बाबा ने कहा, कर्मेंद्रियों का भी अधिकारी, हर चीज का अधिकारी। मैं केवल ये बता रहा था कि शुरू से लेके बाबा जब आते थे इतना नशा, रे भगवान सामने बैठा है, भगवान बैठा है, और मैं पूरी की पूरी मुरली नोट करता हूं। आज तक मेरा ये सिस्टम है, बाबा की मुरली आज भी ऐसे ही है कि मतलब पूरी की पूरी मुरली नोट करते हैं। कहने का भाव ये कि बाबा ने जो भी सुनाना उसको हम कोशिश करके, एकदम ये नशा होता है कि भाई भगवान सुना रहा है, तो भगवान सुना रहा है तो, और भगवान जैसे टीचर क्लास में बोल रहा होता है, भगवान सुना रहे हैं और मैं गोल्डी स्टूडेंट लिख रहा हूं, मैं गोल्डी स्टूडेंट हूं, इतना उस वक्त नशा होता है कि भाई कमाल है, कौन सुना रहा है और किसके शब्द में लिख रहा हूं, कौन मुझे लिखवा रहा है शब्द, जैसे बिल्कुल वो नशा होता है कि गॉडली स्टूडेंट का। परंतु मैं कभी कभी कंपेयर करता हूं उन दिनों में या उसके बाद या आज की डेट में भी, चाहे अभी 31 अक्टूबर को मैं कंपेयर करता हूं, उतना ही नशा होता है कि भगवान आए बैठे हैं, भगवान सुना रहे हैं और बाबा के हम महावाक्य सुन रहे हैं, गदगद हो जाते हैं, रोम रोम खुशी में झूम उठता है, जैसे पहले झूम उठता था प्रैक्टिकल आज भी उतना ही झूम उठता है। तो इसलिए बड़े भाग्यशाली हैं, आज इतना तो मिल रहा है, आगे ये भी नहीं मिलना तो फिर क्या रहेगा, इसलिए बहुत लकी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। आज का विषय है योग युक्त स्थिति, योग युक्त एवं युक्ति युक्त स्थिति, बहुत अच्छी टॉपिक है। तो दोनों का इंटर रिलेशन बहुत है, जितना योग युक्त होते हैं उतना हम युक्ति युक्त होते हैं, और जितना युक्ति युक्त चलते हैं उतना ही हम योग युक्त बन पाते हैं। तो अब ये योग युक्त स्थिति के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे युक्ति युक्त, युक्ति युक्त भी चलना बड़ा जरूरी है। अच्छा, इसका ना थोड़ा सा ब्राह्मण परिवार में कहीं मिस यूज करते हैं, मतलब उन्होंने झूठ बोलने की आदत डाल ली है, बड़ों को भी झूठ बोल देंगे, छोटे को भी बोल देंगे, औरों को भी बोल देंगे, और कई बार झूठ पकड़ा भी जाएगा, परंतु झूठ बोलने के हैबिचुअल हो गए हैं और सोचते ही हैं कि युक्ति, बाबा कहते हैं ना युक्ति से बात करो, युक्ति से, युक्ति युक्ति युक्त है, नहीं 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 ऐसा नहीं करना है हमें। युक्ति युक्त, हम एक संस्कृत में श्लोक पढ़ते थे, सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात, सच बोलो लेकिन प्रिय बोलो, न ब्रियात असत्यम प्रियम, ऐसा सच नहीं, ऐसा सच नहीं बोलो, हाँ भाई असत्य या झूठ और प्रिय लगे ऐसा नहीं, और फिर दूसरी तरफ कहा कि ऐसा भी सच नहीं जो अप्रिय लगे। तो किस तरीके से हम सच बात भी कहें लेकिन इतने युक्ति युक्त कहें, उसमें झूठ भी ना हो और दूसरे को प्रिय लगे, हर्ट ना हो। छोटी छोटी चीजों से आप समझ सकते हैं, समझो एक तो व्यक्ति सीधा किसी को कहता है, ओ अंधे तेरी आंखें कैसे गई, अब उसने कोई झूठ नहीं बोला, ठीक ही पूछा, उसकी जिज्ञासा थी, लेकिन एक दूसरे के पूछने का तरीका कितना अच्छा, हे सूरदास जी मैं ये पूछने की धृष्टता कर सकता हूं कि आपके नैनों को क्षति कैसे पहुंची, कितना फर्क है, देखो कितना फर्क है। तो हमें मतलब कि सचमुच देखा जाए, कई जगह हम युक्ति युक्त ना होने के कारण बहुत नुकसान कर बैठते हैं, बहुत नुकसान। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए अपनी वाणी पूर्ण युक्ति युक्त हो, शब्द ज्ञान युक्त और युक्ति युक्त और राज युक्त, ज्ञान के राजों से भरे हुए हों, तो कभी भी हमें उस चीज की फीलिंग नहीं आएगी, फिर हमारा योग युक्त भी अच्छा होगा। अब समझो बाबा हमेशा मुरली में तो बच्चों को सीधा सीधा कहते हैं, हाँ आज भी कहा ना बाबा ने, बच्चे तुम किसी को सुनाओ, अगर नहीं समझ में आती उनको, हाँ आप देखो परख लो, नबज देखो, अगर तवई है तो छोड़ दो उसको, समझ लो ये अपने कुल का नहीं है, कभी कभी बाबा कहते हैं अपने कुल का नहीं है, समझ लो। हाँ हाँ कभी बाबा कह देता है, हाँ ऐसे ही बंदर टिक टिक करते रहते हैं बच्चे, तुम अपना ठीक है, अपना जो योग्य पात्र हो उनको दो। आज बाबा ने कहा पात्र कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे, बाबा ने कहा शिव के मंदिर में मिलेंगे, और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, और राम के मंदिर में है ना, जे आप में से जिसने सचमुच जो है इन तीनों मंदिरों में कई बार जाके सेवा की है वो जरा हाथ खड़ा करो, कई बार जाके। अच्छा हैं कुछ एक, वेरी गुड, ताली बजाओ इनकी। बाबा के मुरली में जो आज्ञा मिले एकदम करना चाहिए, अब जाके सब जरूर करना। तो बाबा ने जो ये कहा, एक माता एक बार, उसका बेटा कोई बहुत बड़ा ऑफिसर था, बेटे तो गांव में से भी निकल के बेटे हाईकोर्ट के जज बन जाते हैं। अभी हम एक हाईकोर्ट के जज को मिलने गए चंडीगढ़, वो पानीपत में हमारे ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर जो है वहां से हार्डली 3 किलोमीटर दूर एक गांव है, तो उसका बेटा, उसकी माता ज्ञान में चलती है। ऐसे मतलब कोई ना कोई ऐसे मिलते हैं। अब एक माता का बेटा बहुत बड़ा था, पता नहीं आर्मी में ऑफिसर था या कुछ था, कहीं बड़े पद पे था, उसकी इच्छा थी ये ज्ञान में चले। वो जाके ज्ञान सुनाती थी तो डिबेट जब करते थे, प्रश्न पूछते थे तो वो जवाब दे नहीं पाती थी ना, इतना कन्विंस नहीं कर पाती थी। फिर बस वो कहती थी, बाबा ने कहा रावण बुद्धि नहीं सुनेंगे, बाबा ने कहा बंदर बुद्धि ना तिक तिक करते ही रहेंगे, तो अक्सर ऐसा कह के छोड़ देती थी। एक बार मेरे को ले गई सेवा, मैंने उन्हें बड़े ढंग से सेवा किया, उन्हें समझाया सारा कुछ, बहुत खुश हुए। मैं कहा इतने वर्षों से माता जी चल रहे हैं, आप क्यों नहीं पहले आए, आश्रम में क्यों नहीं आए, ये ज्ञान क्यों नहीं लाभ उठाया। कहते बताऊं, सच बता दूं। मैं कहा हां। कहते इस माता जी के कारण। मैं कहा क्यों। कहते मुरली सुन के आती है, नशे में फिर सुनाना शुरू करेगी, और जब मैं 2-3 प्रश्न पूछूंगा जवाब तो दे नहीं पाएगी, जैसे आज आपने कन्विंस किया बहुत अच्छे ढंग से साइंटिफिक वे से, तो जवाब देनी पड़ती, फिर मेरे को बंदर बुद्धि रावण बुद्धि बंदर बुद्धि रावण बुद्धि ऐसे कहना शुरू। मैं सोचती हूँ इनका बाबा जब हमारे लिए यही कहता है रावण बुद्धि बंदर बुद्धि, ऐसे ज्ञान में क्या जाना, क्योंकि बाबा कहते हैं रावण बुद्धि नहीं सुनेंगे बंदर बुद्धि नहीं सुनेंगे। अब देखो वो बोल तो बाबा के ही शब्द रही है, बाबा ने कहा था मुरली में, जैसे आज का तवई, अब आप कल को ज्ञान सुनाना शुरू करो कोई ध्यान से सुने ना कहे तू तो तवई है, कह दे। अब बाबा ने हम बच्चों के लिए कहा है, उनके लिए क्या कहा है, उनके लिए बाबा ने कहा आदर दोगे तो आदर्श बनोगे, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट, दूसरे को सम्मान देने से सम्मान मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए उसको यहां पर युक्ति युक्त, हमारे शब्द युक्ति युक्त होने चाहिए हमें, बल्कि बाबा तो कहते हैं जैसा सोचोगे ना वैसा हो जाएगा। आप ये सोचो नहीं, भले ही अभी नहीं सुन रहे, ये बाबा के बच्चे बनेंगे, ये ज्ञान में अच्छे परिपक्व बनेंगे, इस तरीके समझो। हमें ये होना चाहिए, ना केवल हमें उसमें आ जाना चाहिए। तो यहां युक्ति युक्त, एक बार प्रदर्शनी लगी थी, बहुत साल पहले की बात है, लगभग 40 साल पहले की बात होगी, मुझे तो हो गए लगभग 49 ईयर ज्ञान में, 40-42 साल पहले, पर शुरू से बाबा का एक वरदान है कि कैसी भी परिस्थिति में बाबा ने ये विशेष शक्ति दी है कि मैं क्रोधित नहीं होता। तो प्रदर्शनी लगी, किसी ने किसी को कहा कि चल तेरे को इतना ऊंचा ज्ञान है, या नहीं 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 देख लिए सारे ज्ञान ऐसा ही है, ये भी मजहब होगा कोई, कहे नहीं नहीं आप चलो यहां पर ना विकारों पर विजय प्रैक्टिकल। क्या किसने विजय प्राप्त की, क्या की है किसने, कोई दिखा सकते हो, कहे हाँ दिखा सकता हूं, अच्छा चलो, कहे चलो भाई, कहे प्रैक्टिकल क्रोध पर उन्होंने विजय प्राप्त की हुई है, ऐसा वो कह के लाया। अब मुझे तो नहीं ये बताया था उसने, उन दिनों कोई मोबाइल भी नहीं होते थे, मुझे उसे प्रदर्शनी समझाने के लिए कहा। उसने इतना बीच बीच में हर बात पे, क्योंकि वो तो आया इसलिए था कि मैं इनको क्रोधित करके छोड़ूंगा, ये जल्ला जाएंगे क्रोध में, वो हो जाएंगे, वो हर बात काटता जाए, हर बात इंसल्ट, क्या ये सब बिल्कुल गलत है आपका, ये क्या कर रहे हो आप, ऐसा करता जाए कुछ। मैं फिर नहीं भाई जी इस तरह देखो, ये नहीं भाई जी, मैं ऐसा करके पूरी प्रदर्शनी में 1 घंटा लगा होगा, उसने कितना कोशिश किया, कितना किया, लेकिन मैं एक बार भी क्रोधित नहीं लास्ट में लिटरेचर स्टॉल पर वो भाई जो लाया था जगदीश उसका नाम था, और उसने भी फिर कहा जी मुझे क्षमा करना, मैंने बीच में बहुत अपशब्द बोले, बहुत वो किया आपको बार बार एकदम इस ढंग से सारी बातें आपकी काटता गया। एक्चुअली मुझे इन्होंने कहा कि आप उन्हें क्रोध नहीं दिला सकते, तो मैं इसी तैयारी में आया था कि आज मैं उसको क्रोधित करके छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तो बहुत देखे महात्मा एक मिनट में हो जाते हैं, किसी किसी स्थान पे कुछ बात करो शास्त्रार्थ में ही आपस में हो जाते हैं, किसने जीता, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने नहीं जीता। तो कहते लेकिन मैं आज मान गया हूं ये ज्ञान सब सर्वोत्तम है और सचमुच यहां विकारों पर विजय प्राप्त कराते हैं। मतलब कि हमें बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे, अब वो बात अलग, बाबा कहते हैं तुम्हारे चलन और चेहरे से, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे कर्मों से सेवा होगी, उससे प्रत्यक्षता बाबा की होगी। ब्रिजमन भाई साहब से अच्छी तरह बातचीत, जब तक वो थे तो बीच बीच में वो खास फोन करके भोजन पे बुलाते थे, तो हम भोजन करते हुए उनसे इंटरेक्शन एक दिन गीता पे हुआ, भाई साहब ये जो तरीके हम कर रहे हैं, जगह जगह गीता ज्ञान के कॉन्फ्रेंस रखते हैं, महात्मा लोग आके प्रशंसा भी करते हैं, सारा कुछ है, लेकिन क्या सचमुच इससे क्या कोई है महात्मा जो बिल्कुल मान गए गीता का भगवान शिव है ना के श्री कृष्ण, प्रत्यक्षता तो यही कहेंगे ना मान। तो कहते बहुत कम है, लेकिन वो हमारे जीवन से प्रभावित हैं। फिर उन्होंने कितनी अच्छी बात भाई साहब ने बताई, कहते मेरे पास बाबा की मुरलियां हैं, गीता का ज्ञान दाता वो हमारे भाषणों से, हमारे उससे, बिन बिन तर्कों से, उससे नहीं होगा सिद्ध, गीता ज्ञान दाता सिद्ध होगा बाबा ने कहा जब तुम्हारी संपन्न अवस्था और तुम बिल्कुल सही, तुम्हारे कर्मों से तुम्हारे कर्म बिल्कुल बाबा जैसे बन जाएंगे, बात समान स्थिति होगी, तब गीता ज्ञान दाता प्रसिद्ध हो जाए। तो देखो कितनी अच्छी बात सुनाई, क्यों रुका हुआ है अभी, क्योंकि हम वैसे ऐसे अभी नहीं बने। अभी तक भी सारे संत इतनी महिमा करते हैं, बहुत उन्हें सब मालूम है, ये नहीं कि वो उनको नहीं पता क्या क्या ज्ञान की इनकी बातें जो कुछ अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतनी महिमा करते हैं, इतनी महिमा करते हैं। उसका कारण केवल केवल प्रैक्टिकल में हम सबका जीवन, वो सब अच्छी तरह जानते हैं, जीवन ही उन्होंने यही काम किया है, एक मिनट में परख लेते हैं। दादी प्रकाशमणि ऊपर पांडव भवन में, जब ओम शांति भवन में एक बार संत सम्मेलन हुआ, एक महात्मा ने दादी को कहा कि मुझे कैसी सिद्धि मिली हुई है कि रात को सोते हुए अगर मैं कमरों में जाऊं, मैं किसी सोते हुए को देख लूं, तो मैं बता सकता हूं कि ये सचमुच ब्रह्मचारी हैं या नहीं है। तो क्या दादी जी मुझे छुट्टी देंगे, रात को चाहे मेरे साथ किसी को भेज दो, लेकिन मैं चाहता हूं बहनों के रूम में भी, भाइयों के रूम में भी जाना। दादी ने छुट्टी दिया और वो गए, सुबह क्लास में सुनाया, पूरी दुनिया में ऐसी ब्रह्मचर्य युक्त संस्था पूरी दुनिया में कोई नहीं है, ये सारे के सारे, ये केवल बाहर से सफेद नहीं है, अंदर से भी सफेद है, मैंने सब देख लिया, जान लिया, पहचान लिया। वो तो चेहरा देख के ही बता देते हैं, इतनी तो उन्होंने जिंदगी इसके लिए लगाई है, कितनी पवित्र आत्माएं हैं, कितने नहीं है। हाँ, एक मिनिस्टर ने कहा, अभी बाबा ने कहा ना, मुरली में आया था ना अव्यक्त मुरली में, हाँ, कि बच्चे प्रवृत्ति वाले क्या कहते हैं कि पवित्रता तो हमारा स्वधर्म है, साथ रहते भी हम पवित्र रहते हैं, परंतु बाबा ने कहा कि बच्चे हाँ वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं आग कपूस इकट्ठे होके आग ना लगे संभव नहीं है, है ना। तो ये बाबा ने कहा तो, लेकिन जो है उसमें सचमुच एक मिनिस्टर ने मेरे से कहा, कोई बाल ब्रह्मचारी युगल था, बाल ब्रह्मचारी युगल समझते हो कौन है, जैसे हमारी शिवानी बहन है ना, वो बाल ब्रह्म मतलब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ मैरिज, प्रथम दिवस से ही पवित्रता का पालन जो कर रहे हैं, ऐसे बाल ब्रह्मचारी युगल भी अपनी संस्था में हाँ कम से कम 1000 से तो ऊपर हैं, कम से कम जहां तक मैं एग्जैक्ट गिनती नहीं, क्योंकि भिन्न भिन्न सेंटरों पे अक्सर कोई ना कोई मिल जाते हैं। तो मैंने एक बाल ब्रह्मचारी युगल की मंत्री को, मंत्री आया कुछ उद्घाटन करने जन्माष्टमी का सारा प्रभु, फिर मैं कहा ये बाल ब्रह्मचारी युगल है, वो दोनों थे। अच्छा, वो कहते अच्छा, खैर ऐसे किया सब कुछ। फिर उसने बाद में मुझे कहा, कहते जी ये कैसे आप लोगों को पता लग जाता है। फिर मैं कहा हमारे पास तो हजारों गृहस्थी सब ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हैं, पवित्र रहते हैं। कहते आपके पास क्या थर्मामीटर है कि गृहस्थी पवित्र रहते हैं, बताओ। वो आपको कह दें हम पवित्र रहते हैं, क्या थर्मामीटर है बताओ। अच्छा क्या थर्मामीटर है, क्या थर्मामीटर है, कोई बता सकता है उत्तर? हाँ ठीक कह रही है माताएं, दृष्टि है ना। मैंने कहा हमारे पास थर्मामीटर है, कहते क्या है। मैं कह यहां बहने योग में दृष्टि देती है ना, जो पवित्र नहीं है या कुछ उल्लंघना हुई या कुछ, वो दृष्टि नहीं ले पाता, दृष्टि नीचे हो जाती। मैं कह और थर्मामीटर है क्या। मैं कह पवित्र आत्मा इतनी उमंग में सेवा के, योग के, तपस्या के, सब कुछ, और जहां पवित्रता कहीं भी किसी की अगर उल्लंघन हो गई, वैसे तो होती नहीं, अगर किसी की हो जाए तो उसका तो दिल टूट जाता है, चेहरा मुरझा जाता है, खुशी गायब हो जाती है, क्लास में आने का दिल नहीं करता कि मैं अवज्ञा कर रहा हूं। हा? तो आखिर बहने पूछ ही लेती हैं कि क्या बात, तेरा चेहरा मुरझाया हुआ है, कोई भूल हुई है क्या। कहते अच्छा, मैं कह बिल्कुल। मैं कह थर्मामीटर है। तीसरा, मैं कह मधुबन में जाते हैं तो भी फॉर्म भर के जाते हैं, कितने समय से धर्मराज बाबा को सामने रख के लिखो, कितने समय से पवित्रता की पालना कर रहे हैं। मैं किसकी कॉन्शियस ऐसी होगी भगवान के घर में, परंतु वैसे भी पता लग जाता है, क्योंकि पवित्रता है तो इतना उमंग रहता है, इतना सेवा का भी हर चीज, चेहरा भी इतना खिला रहता है, जो बात ना पूछो। ये थर्मामीटर है ना, प्योरिटी तो थर्मामीटर है ना, खुशी का, आनंद का, प्रेम का। तो बड़ा खुश हुआ ये जान के। तो जितने महात्मा हैं इसी बात पे ही प्रभावित होते हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा थर्मामीटर, वो चेहरे को देख के समझ जाते हैं ये गृहस्थी हैं लेकिन सब पवित्र हैं, और वो सचमुच बहुत बहुत जो है नतमस्तक इसी बात से हुए हैं कि इतना बड़ा कार्य, इतना बड़ा साथ रहते, लाखों गृहस्थी पवित्र रह रहे हैं। अभी आनंद सरोवर में जब हुआ था यहां पे संत सम्मेलन, तो आशा दीदी सुना रही थी कि किसी संत ने, कुमार कुमारियां सारे भाग भाग के सेवा करते हैं ना सब, तो एक कुमार को पूछा अलग से ले जा कि तुम इतनी यंग बहनों के साथ दिन रात सेवा करते हो तो आपका दिमाग खराब नहीं होता कुछ, इन पे बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती कुछ और जो है ऐसे। कह ना बिल्कुल नहीं होती। कह क्यों। कह क्यों, बाबा ने ना हमें कहा हुआ है देह को देखना ही नहीं है, चमड़ी को नहीं देखना है, आत्मा को देखना है। देह को देखा तो सर्प, आत्मा मणि को देखना है। हम देखते ही नहीं बहन या भाई, हम तो सब आत्मा को देखते हैं। तो जब ये सुना रहा था तो कहते हम देखते ही आत्मा को, खुद भी हम कहते अच्छा, कहते शिव 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 शिव। मतलब ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है आत्मिक स्थिति में, दृष्टि में, उसके लिए उसको शिव 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 याद आ गया उस वक्त। मतलब एक बहुत बड़ी बात वो मानते हैं, और यहाँ तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, यहाँ के जीवन की मर्यादा ये है, यहाँ का सब कुछ ये है, सारा सिस्टम इस पर चल रहा है, सारी इंस्टीट्यूशन इस पे चल रही है। हाँ, उन्हें क्या पता कितनी ऊंची हमारी धारणाएं हैं। तो योग युक्त और युक्ति युक्त, खैर युक्ति से हमें चलना है। अब युक्ति युक्ति अपनानी चाहिए ना, युक्ति युक्त ना हो। मैं जब शुरू में ज्ञान में चला, 16 वर्ष की आयु थी, तो ज्ञान नशा पूरा चढ़ गया एकदम, बहुत अच्छी तरह नशा चढ़ गया। तो फिर जो है भगवान आया, क्योंकि भगवान को ढूंढ रहे थे। छोटी उम्र में भी संस्कार ऐसे थे, कोई भी महात्मा मिलता हम कहते भगवान कहाँ है, भगवान को मिलना है। तो जब जो है उसमें जब ऐसे हुआ समझो, तो उसमें बहुत ही विशेष बात ये थी कि पढ़ाई भी पढ़ते, लेकिन ईश्वर उपलब्धि का इतना नशा चढ़ा शुरू में, तो उसमें जो है हमें यही आया कि भले कितना भी कुछ घर में विरोध हो, कुछ भी हो, लेकिन हम उस नशे में थे कि भाई परमात्मा मिला तो और क्या चाहिए, और उसके पीछे तो फिर सब त्याग हो जाता है। तो मेरे को बहन ने, पहले तो मैं सीधा सीधा कहता था तो उसके कारण पिटाई होती थी। पिताजी ने तीन बार मेरी पिटाई की अच्छी तरह से, क्योंकि मैं सीधी सीधी बातें, भगवान आ गया बस, अब मुझे कुछ नहीं लेना, बस पा लिया, पाना था सो पा लिया, ये दुनिया तो जाने वाली है। तो बाबा कहते हैं ना, सीधा सीधा बच्चे उनको नहीं कहना है, जोश में होश रखना है। तो मेरे को बहनों ने कहा, अच्छा वो पूछते थे भाई मान लो शादी कराएगा, कहते तेरे से पूछें शादी कराएगा तुझे क्या कहना है, ये भी नहीं कहना कि हाँ हाँ कराऊंगा, तुझे युक्ति से ये जवाब देना है। युक्ति युक्त की बात बता रहा हूं कि आप क्यों मेरी पढ़ाई वेस्ट करते हो, ये अभी उम्र है शादी की क्या। हाँ, शादी होती है 25-27 में, जब होगी तब प्रश्न पूछना। आज मैं कह दूं नहीं कराऊंगा तब शायद मेरा विचार बन जाए, और आज मैं कहूं है कराऊंगा और तब ना हो जाए, ये उस वक्त अभी मेरी पढ़ाई क्यों डिस्टर्ब करते, क्यों बच्चों का ख्याल उधर। तो ये मेरे को ठीक युक्ति लगी, क्योंकि कहते खाम खा तू कहे नहीं कराऊंगा और तेरे पेरेंट्स फिर तेरे पापा पिटाई करें वो करें, 8-9 साल तू स्ट्रगल खाम खा। हाँ, कहो वो ये निर्णय उसी वक्त होगा, और क्यों नहीं देखेंगे जो समाज की रीति होगी। अब माँ बाप से कोई अलग थोड़ी है, ऐसा कह के युक्ति से अभी 8-9 साल तो निकालो। मतलब ये भी नहीं कहो नहीं कहें, ऐसा नहीं मैं कहता हूं नहीं कराऊंगा, लेकिन ये उसी टाइम ही अभी मुझे पढ़ाई पढ़ने दो। तो ये बिल्कुल अच्छा लगा, नहीं तो बहुत स्ट्रगल होना था। तो युक्ति से बात की ना, फिर 8-9 साल के बाद, 8-9 साल तक तो बहुत सेवा हो गई बाबा की। तो क्योंकि जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया उसी में से, क्योंकि जाते ही प्रतिज्ञा की हमने कि बाबा एक साल में यहां सेंटर खोलना है, और खूब मेहनत की। उसी कॉलेज से 50 कुमार वो बाबा के बच्चे बन गए। नीलूखेड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज, अब तक वो कोई चीफ इंजीनियर बना हुआ है, कोई डायरेक्टर बन गया, कोई कुछ बन गया, रिटायर हो गए कई, मतलब कि वो जुड़े हुए हैं। मतलब देखो तो ये एक संकल्प किया कि भाई ये बाबा के बच्चे बनाने ही, तो दिन रात लग गए। जितने हम खुद व्हाइट कुर्ता पजामा पहनते थे, तो हमको देख के सभी ने व्हाइट कुर्ता पजामा पेंट शर्ट छोड़ दिया, और हमारा नाम कॉलेज में पड़ गया राजयोगी। तो सीनियर तो राजयोगी हैं, हर सेमेस्टर में 2-3 व्हाइट कुर्ते पजामे वाले थे जी राजयोगी। फिर स्टूडेंट यूनियन की मीटिंग बैठी कि ये क्या कॉलेज सारा राजयोगीकरण होता जा रहा है, राजयोगी बनते जा रहे हैं। रिजल्ट निकाला, ये सीनियर राजयोगी भारत भूषण जो आया ना, इसी ने सबका दिमाग खराब किया। इसलिए एक तरीका आगे सर्च की कि कैसे करता है, कहते ये बुला के, क्योंकि मैं एक राजयोग केंद्र खोल लिया था, ये बुला के उनकी आंखों में आंखें दृष्टि देता है बड़ी पावरफुल, और वो राजयोगी बन जाते हैं। तो एक रेजोल्यूशन पास किया, कोई भी स्टूडेंट सीनियर राजयोगी भारत भूषण की आंखों में नहीं देखेगा, और लगा दिया नोटिस बोर्ड। अब जहां जाऊं ऐसे कर लें स्टूडेंट के, ना। अच्छा लेक्चरर भी, तो एक बार एक लेक्चरर मिस्टर खोसला पढ़ा रहे थे और मैं पिछली बेंच पे बिल्कुल मेडिटेशन में विदेही बन के रूहानी दृष्टि देते हुए मैं सुन रहा था। एकदम उसकी नजर जब मेरे से कंटेक्ट हुआ, हेलो भारत भूषण, मैं कहा यस सर, मैं खड़ा हो गया। व्हाट आर यू डूइंग? मैं सर आई एम लिसनिंग योर लेक्चर, आपका लेक्चर सुन रहा हूं। नो, यू आर हिप्नोटाइजिंग मी, आप मुझे हिप्नोटाइज कर रहे हैं। मैं नहीं सर, कहते नो रेज आर कमिंग फ्रॉम यू टू मी, आपसे किरणें आ रही हैं मेरे पास, तुम मुझे हिप्नोटाइज कर रहे हो, तुम लेक्चर नहीं सुन रहे हो। तो खैर वो शाम को ढूंढता हुआ हॉस्पिटल एरिया में हमारा सेंटर था, वहां आया, कि भारत भूषण तुम क्या करते हो, मेरे को तो एकदम जर्क लगता है जब तुम बैठे होते हो, तेरा ऑरा तेरा तेज, और मुझे लगता है जैसे कि मैं सर मैं मेडिटेशन में केवल सुन रहा होता हूं। क्या मेरी बात मानेगा तो मेरे लेक्चर में ना मेडिटेशन ना किया कर, नीचे मुंह करके चुप करके लिखता रहा। तो बाबा कहते हैं ना कि बच्चे शुरू शुरू के अनुभव बाबा की मदद भी बहुत होती है। तो योग युक्त स्थिति में मैं ये बताना चाहूंगा कुछ एक पॉइंट्स, मैं आपके जो काम के हैं 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप निरंतर योगी बन सकते हैं, ठीक है? आप नोट करना, सारे काम के पॉइंट हैं। सबसे पहला है वो है कंबाइंड भव, मतलब कि कंबाइंड मतलब हा? मतलब बाबा और मैं इकट्ठे हैं, वॉकिंग टुगेदर, टॉकिंग टुगेदर, ईटिंग टुगेदर, मीटिंग टुगेदर, कट्ठे खाते, कट्ठे मिलते, कट्ठे करते, कट्ठे हर काम करते। इस युक्ति ने इतना ज्यादा योग में मदद की है, हर वक्त ये समझना बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, इसका आप अनुभव करके देखें। आप हर समय बाबा साथ, हमारे रतन दादा लंदन में उनका सारी प्रॉपर्टी देखभाल करते थे, तो एक ऑफिस में अपने चेयर दूसरी बाबा की लगाई हुई थी। वो कहते हैं बाबा भी मेरा पार्टनर बैठता है और मैं उससे विचार करके सलाह करके हर काम फाइनल करता हूं। तो मतलब बाबा साथ है ये अगर निश्चय है तो इतना नशा रहेगा, कौन साथ है, हजार भुजाधारी भगवान मेरे साथ है तो चिंता की क्या बात है। नहीं तो सबसे पहला तो निश्चिंत रहेंगे आप, इतनी बड़ी हस्ती मेरे साथ है तो क्या कुछ किसी प्रकार का कुछ हो सकता है, नहीं तो मतलब एक तो निश्चिंत और दूसरा नशा बहुत रहेगा, स्वयंभू जिसको दुनिया ढूंढ रही है, लाखों करोड़ों भक्त एक झलक के लिए तड़फ रहे हैं। छोटी बात है, कितना देखो जाके, तिरुपति देखो, सोमनाथ देखो, उधर देखो, विश्वनाथ देखो, कितना तांता लगा हुआ है भक्तों का। और एक से जो भी गए होंगे सोमनाथ देखा होगा, एक सेकंड से ज्यादा खड़े नहीं होने देते, चलो चलो हो गए दर्शन। आप सोचो जिसको ढूंढने पाने के लिए कितने कष्ट सहन करते हैं, कोई कोई तीर्थ स्थान पे तो दो दो दिन लाइन में लग, पूरा दिन लाइन में लग के नंबर आता है। हाँ तो वो मेरे को प्राप्त हो गया, वो मेरे साथ है, इतनी बड़ी हस्ती साथ है तो कितना नशा उसका रहेगा। एक नशा, एक निश्चिंत बिल्कुल फिकर, अगर कोई जरा भी किसी को चिंता होती है इसका मतलब निश्चय की कमी है। कौन हजार भुजाधारी भगवान साथ, परिस्थितियों कैसी काले बादलों की तरह आ जाएं, पक्का निश्चय हो ये सब काले बादल झड़ जाएंगे। नहीं आज तक यज्ञ को शुरू से कितनी परीक्षाएं, हजारों परीक्षाएं आई और कहां पहुंच गया यज्ञ देखो, कहां पहुंच गया आज देश की प्रेसिडेंट सबसे बड़ी संवैधानिक पद पे बैठी हुई बच्ची, हाँ उसके बायोडाटा में लिखा हुआ है शी इज एसोसिएटेड विद ब्रह्मा कुमारी, तो कितनी बड़ी बात है। वो पूरे नियम धारणाओं पे चलती है और प्रधानमंत्री जी को तो परसों देखा ही है, क्या शब्द उन्होंने बोला, क्या सुंदर स्पीच थी। आप अपने गेस्ट को अगर वो स्पीच सुनाए बहुत सेवा होगी। उन्होंने कहा कि मैं यहां पे चीफ गेस्ट नहीं हूं, मैं तो आपका अपना हूं, अपनेपन से आया हुआ हूं यहां पे। कितनी एक एक चीज और बहुत बारीकी से मैंने संस्था को देखा है, बहुत दशकों से देखा है, क्या शब्द थे आप सोचो। साथ क्या बोला, मैं देश जाता हूं विदेश जाता हूं हर जगह बहने मिलती हैं, हर जगह देखता हूं। मैं कह सकता हूं कि ये शांति का जो कार्य, क्योंकि वहां शांति शिखर का उद्घाटन करने गए थे रायपुर सेंटर, जो शांति का आप कार्य कर रहे हैं ये सचमुच सारे विश्व में शांति का कार्य, उसकी पताका ब्रह्मा कुमारी के हाथ में ही आने वाली। कितने सुंदर उनके शब्द थे नहीं? तो बाबा कहते हैं कि प्रत्यक्षता का जैसे टाइम आ गया ना, सब बड़े से बड़े वीवीआईपी भी बाबा के लिए इतना कुछ बोल रहे हैं, ये समझ लो अब पर्दा खुलने जा रहा है। केवल हमें अपनी तैयारी करनी है। तो कंबाइंड भाव, कौन हस्ती साथ है, दूसरा निश्चिंत, और तीसरा अगर वो साथ है तो उससे आप कुछ ना कुछ शेयर करते रहेंगे, कोई ना कोई दिल की बात शेयर जरूर करेंगे। फिर सेकंड है कमल पुष्प समान, कमल कीचड़ में रहते हुए जैसे न्यारा रहता है और प्यारा रहता है, ऐसे हमें भी अगर निरंतर योगी बनना है तो हमें योगयुक्त स्थिति बनानी है, तो कमल की तरह कीचड़ में रहते हुए न्यारा और प्यारा। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए 5 स्वरूपों की ड्रिल, अब की बार भी बाबा ने कहा ना एक्सरसाइज बच्चे जरूरी है ना, तो ये ड्रिल जो है करते रहें, 5 स्वरूपों की ड्रिल। 5 स्वरूपों की ड्रिल सहज करने के लिए एक स्लोगन बताता हूं, उसको अपनाएंगे तो बड़ा इजी कर पाएंगे। वो क्या है, अनादि में दिव्य सितारा, अनादि में दिव्य सितारा, और आदि में देवता प्यारा। क्या बताया, आदि में देवता प्यारा, मध्य में भक्तों का सहारा, लाखों भक्त मेरे पूज्य स्वरूप की आराधना कर रहे हैं तो भक्तों का सहारा, संगम पर बाबा का दुलारा, और अंत में फरिश्ता न्यारा। कितना सहज है, बस ये 5 स्वरूपों के ड्रिल, ये जरूर दिन में 8 बार बाबा मिनिमम कहते हैं, इससे ज्यादा कितनी बार भी करो, कोई टाइम फिक्स कर लो, सुबह उठते गुड मॉर्निंग करते करो, नाश्ते से पहले करो, भोग लगाने से पहले भोजन करना ही तब है 2 बार ड्रिल, लंच टाइम में करो, रात के टाइम डिनर टाइम में करो, तो 8 बार हो जाएगी। नहीं तो सोने से पहले सोना नहीं जब तक ड्रिल पूरी ना हो, कम से कम 8 बार तो ड्रिल करनी ही है। ये एक अंदर लक्ष्य होगा तो उससे स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। तो हमारे अंदर ये दूसरा कमल पुरुष समान, तीसरी युक्ति है निरंतर योगी बनने की, वो है करण करावन हार। कर्म में अक्सर करके बाबा भूलता है, उस वक्त अगर हमें याद रहे बाबा कर रहा है बाबा करा रहा है, बस ये पक्का याद रहे, कौन कर रहा है कौन करा रहा है, बाबा कर रहा है बाबा करा रहा है, ये याद रहेगा तो निरंतर योगी बन जाएंगे। इसलिए हमें जो है ये करण करावन हार शब्द याद रहना चाहिए तो बहुत अच्छा आपका योग लगेगा। करण करावन हार बाबा है, एक ही बात बड़ा पक्का रखें है? उससे क्या होगा, अहंकार नहीं आएगा, बाबा आप कर रहे हैं ना, बाबा आप करवा रहे हैं ना। हर वक्त आप बाबा को आवाहन करें, बाबा कमाल है आपकी, आप सब कुछ कर आप जाते हैं और नाम मेरा कर देते हैं, मुझे आगे कर देते हैं, हाँ सब कुछ करके खुद को छिपाया, तो इससे भी आपका योग इतना अच्छा लगेगा, करण करावन हार अगर शब्द याद रहेगा, साथ साथ उसका स्वरूप बन के वैसा अभ्यास करते रहेंगे, तब निरंतर योगी बन जाएंगे। इसका भी अभ्यास खूब करें। फिर है नेक्स्ट है फोर्थ कर्मेंद्रिय जीत। कर्मेंद्रिय जीत माना मतलब उसमें क्या करें कि ये जो कर्मेंद्रियां हैं, पांच कर्मेंद्रियां स्थूल और तीन सूक्ष्म, इन सब को ईश्वरीय सेवा में लगा के रखें, है ना। अगर नहीं लगा के रखेंगे ना फिर क्या होगा, बाबा कहते हैं अपनी दिनचर्या का भी टाइम टेबल और मन का भी टाइम टेबल बनाओ। हाँ, और अच्छा बिजनेसमैन वो जो ये जानता है मुझे कैसे अपने मन बुद्धि को बिजी रखना है हर वक्त ईश्वरीय कार्य में, जरा भी टाइम वेस्ट ना हो। आज भी मुरली में आया, तुमको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो हमको टाइम वेस्ट नहीं करना, इसलिए हमें उसमें कोशिश रहनी चाहिए। कर्मेंद्रिया जीत, सब कर्मेंद्रियों द्वारा सेवा करते रहे कुछ ना कुछ, क्योंकि बाबा ने कहा सह योगी ही योगी है। बाबा ने तो कितनी सहज युक्ति बता दी है सेवा की, क्या बताई युक्ति, बच्चे कुछ नहीं कर सकते, आप एक ही काम करो, क्या, दुआएं दो और दुआएं लो। अच्छा दुआएं दो, कहीं कहते दुआएं कैसे दें हम, दुआएं कैसे दें, हम तो दुआ देना चाहते हैं, दुआ देते हैं धुआं निकलना शुरू हो जाता है, अब कैसे दुआ दें, आपको युक्ति बताएं दुआएं देने की, बहुत सहज है, आपको युक्ति बताते हैं कि पांच छह लोग हैं ना जिनसे संबंध कभी कभी बिगड़ता है और बड़ी मुश्किल पड़ती है, घर में पति पत्नी माता पिता बाल बच्चे यही है, एक आधा ऑफिस में बॉस है या सबॉर्डिनेट है, आप देखना सात आठ लोग से ज्यादा नहीं मिलेंगे जिनसे रोज वास्ता पड़ता है, तो आप क्या करो, वहीं से ही टेंशन आते हैं और वहीं से ही अच्छे संबंध बनते, तो आप क्या करो उनकी विशेषताओं का चिंतन करो और वो चार पांच विशेषताएं लिख के रखो, और आप दिन में एक बार उनको उनकी विशेषता याद करके सच्चे दिल से उनको क्या कहना है, उनको कहना है आप बहुत अच्छे हैं, क्या कहेंगे, एक बार कम से कम दिल से प्रशंसा करनी, करेंगे जो कहते हैं करेंगे वो अपने दोनों हाथ खड़े करो। अच्छा ठहरो, मैं धर्मराज को फोटो भेजना है आपका, तो ताकि बाबा कहते ना प्रूफ दिखाऊंगा, हैं क्या प्रूफ दिखाएगा कि देखो तुमने मेरे दूत के सामने प्रतिज्ञा की थी और फिर तुमने वो निभाई या नहीं निभाई, वो आपको पूरा उसका चार्ट देगा बाबा, थैंक यू नीचे कर ले, है ना। तो ये एक विशेष लक्ष्य रखना, सबके लिए जरूर क्लैपिंग करो, बड़ा संकल्प किया ना। अच्छा माताएं अब घर में जाके अपने पति को क्या कहेंगी, आप बहुत अच्छे हैं, वो कहेंगे आज सूरज दूसरी तरफ से क्यों निकल। भाई लोग आप अपने धर्म पत्नी को जाके क्या कहेंगे, थोड़ा सा एक बात ध्यान रखना भाई लोग, दिल से कहना है, फॉर्मेलिटी नहीं, ये नहीं कि सुन तू बहुत अच्छी है फटाफट चाय ला, ठीक है, ये थोड़ा सा दिल से कहना। अच्छा थोड़ा अभ्यास करो, जो इधर बैठा है उसे भी प्यार से कहो, भाई जी आप बहुत अच्छे, बहन आप बहुत अच्छी, सब करो एक दूसरे को। देखो सबके चेहरे खिल गए हैं, क्यों, बाबा कहते हैं ये दुआ देने की तरीका है, किसी को आप प्यार से कहते हैं आप बहुत अच्छे हैं उसका चेहरा खिल जाता है, बाबा ने कहा दुआएं देंगे तो खुश होगा, उसकी विशेषता आदि अनादि स्वरूप देख के बोलो, तो बहुत ही आपको इसका अच्छा। आज दोपहर को भोजन करेंगे ना, उससे पहले घर में फोन करना कोई भी एक जो नियर हो, चाहे बच्चा है चाहे पति है, कह सुनो मैं आपको ना एक बात बताना चाहती हूं, कह क्या, कह आप ना बहुत अच्छे, आप उसका रिजल्ट देखना, रिजल्ट ये मिलेगा अगर बेटे को करें मम्मी तुम तो मेरे से भी बहुत अच्छी हो, कोई हो सकता है पति को करें वो कहे अच्छा तुझे आज पता लगा है मैं अच्छा हूं, कहना हाँ आज पता लगा, आज क्लास में बताया हमें। तो इस तरीके से समझो, देखनी अच्छाई है और कुछ नहीं देखना। ये एक बहुत बड़ी तपस्या है। बड़े से बड़ा महारथी हो चाहे कोई हो, इस चीज में ये नहीं कह सकते मैं कभी किसी की बुराई ना देखी ना चित पे रखी ना कुछ, क्योंकि उनको तो डेली रोज ये करना पड़ता है, किसी को शिक्षा देनी, किसी को कुछ करना। परंतु बाबा कहते समझना अलग चीज है, पर देखना चित्त पे रखना विशेषता को वही वर्णन करना है। और यहां पर भी जब तक है ना, आप ट्रेवल में भी जब जाएंगे, बस एक दूसरे को यही कहती रहो कि आप ना बहुत ही अच्छे है। आप प्रैक्टिस, संस्कार बन जाएगा। कुछ ही दिन 21 दिन प्रैक्टिस करो, आप देखना आपका संस्कार बन जाएगा। फोन पे भी जहां भी जो भी मिलेगा, आप जब ऐसा कहना शुरू करेंगे और केवल रटे रटाए शब्द ना हो, जैसे आप कह सकते हो आपकी ना ये बहुत अच्छी एक क्वालिटी मैंने देखी, सचमुच आप बहुत अच्छे। अच्छा किसी को कहें कि आप घर गए कि कमाल है तेरी केयरिंग नेचर, आप अपने युगल को ही कह रहे हैं कितना आप घर साफ सुथरा रखती हो, सचमुच मुझे करना पड़े मैं तो नहीं कितना कर सकता, तुम्हारी कमाल है, यू आर ग्रेट, आप बहुत अच्छे। ऐसे किसी को किस तरीके, बच्चे ने काम बहुत जल्दी करके, वाह बेटा बहुत लवली, फटाफट तुम काम कर, तुम तो बहुत अच्छे। ऐसे कोशिश करें पुनः पुनः, तो इससे आप देखना कितने संबंध भी मधुर बनते हैं और कितना अच्छा वो हो जाता है। तो ये बाबा ने सबसे अच्छा वो बताया। और लास्ट है कमाल मेरे बाबा की, है ना, बाबा के गुणों का गान करना कि बाबा कमाल है, बाबा की, बाबा कमाल है आपकी, सारी दुनिया की आप सदगति कर रहे हैं। आज नहीं आया मैं लिबरेटर हूं, मैं गाइड हूं, मैं मर्सीफुल हूं, मैं रहम दिल हूं, कितने टाइटल आए। तो बाबा के जो मुरली में टाइटल आए ना, सारा दिन उस ढंग से याद करो और उसका अनुभव करो, सचमुच बाबा आप कितने मर्सीफुल हैं, सचमुच बाबा आप कैसे हम फंस जाते हैं लेकिन आप लिबरेट कर देते हैं हमें, तो लिबरेटर भी हैं। इस तरीके दिल से याद करेंगे तो आप निरंतर योगी बन जाएंगे। चलो चले बाबा के पास।
तुम्हें आना है,
तो इन पांच चीजों का अभ्यास जो मैंने बताया इनको यूज करेंगे, हाँ इवन एक को भी दिन रात यूज करेंगे ना, इन पांच युक्तियों उसमें से भी आप निरंतर योगी बन सकते हैं। तो कोशिश करें पुनः पुनः कंबाइंड रहें, करण करावन हार की स्मृति रखें, और कमाल मेरे बाबा की बार बार गुणों को याद करना। जो आज बाबा ने मुरली कहा था, बच्चे याद करते करते तुम्हारे प्रेम में आंसू आ जाएं। हाँ आंसू बहुतों को आते होंगे ना, बाबा के प्यार में किस किस को रोज आंसू आते हैं, देखो कितने हैं, है ना। खैर हमारा मतलब ये नहीं है कि कल से जिनको नहीं आते और वो योग में बैठे कि आज तो मैंने आंसू निकाल के ही छोड़ने। आंसू निकालना हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, हमारा तो बाबा के प्यार में बस डूबना। चाहे आंसू निकले निकले उसकी परवाह नहीं करो, और वो तब होता है जब बाबा के गुण, आप बहुत अच्छे हो तो बाबा के गुण, जितना बाबा के गुण हम दिल से गाते हैं उससे जो है अपना आप ही प्यार में आंखें नम्न हो जाती हैं। बाबा के एहसान याद करते हैं तब भी याद हो जा वो हो जाती है। तो ये कम प्रयास करें उससे हमारी स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। अच्छा, ओम शांति। एक सबसे गिफ्ट चाहिए, मैं हमेशा लेता हूं, देंगे आप सब? मतलब कि जितना योग का शौक होना चाहिए ना, बाबा के बच्चों को शौक कम है। थोड़ा टाइम बैठ, चलते फिरते 21 घंटा बैठो। हम कहते हैं बाबा ने जो बताया चलते फिरते के अलावा बैठ के भी 3 घंटा योग जरूर करो। 3 ना कर सको तो 2 तो अवश्य करो, नहीं तो 3 करो। अच्छा, कभी बाबा ने कहा अमृत वेले चलते फिरते करो? कहा है कभी? तब मधुबन में भी बैठते हैं ना माता जी, उधर उस भाई मिलो। तो चलते फिरते कभी कहा बाबा ने अमृत वेला को? नुमा शाम कहा? मधुबन है हमारे सामने एग्जाम्पल है। तो सुबह 3:30 उठते हो, 5 बजे तक 1.5 घंटा हो जाता, फिर नुमा शाम करते हो, मुरली से पहले आधा घंटा योग चलता है, आधा घंटा उस टाइम, 3 घंटा तो बाबा ने मर्यादा बताई है। उसके अलावा भी देखो ट्रैफिक कंट्रोल मर्यादा है, कभी ट्रैफिक कंट्रोल ये नहीं कहा चलते फिरते करो। रात को गुड नाइट मेडिटेशन, तो कम से कम 3 घंटा स्पेशल बैठ के एक लक्ष्य ले लो कि हमें जरूर बैठना है। उससे आपकी बहुत अच्छी और शक्तिशाली योग करना है, उससे आपकी बहुत अच्छी अवस्था बनेगी। तो बाबा के कमरे में जाते हुए ना एक स्लिप डाल के जाना, क्या दृढ़ संकल्प लेके जा रहे हैं और क्या छोड़ के जा रहे हैं। तो मैं केवल वही बात कहता हूं जो करता हूं, मैं कम से कम रोज करता हूं इतना, कैसे भी हो जाए योग ने मिस करते। और महीने के एंड तक 108 घंटा, ये दादी प्रकाशमणि ने इसी हाल में ये संकल्प दिया था। एक बार मीटिंग थी, एनुअल मीटिंग 2004 में, एकदम इतने सारे प्लान सुनाए गए, ये प्लान ये प्लान, ये सर्विस वो सर्विस। हम दादियों ने 14 साल तपस्या की, क्या आप 14 महीने नहीं कर सकते? हर महीने 108 घंटा दादी कहती है आप सबको योग तपस्या करनी बैठ के। तो हमने प्रतिज्ञा की थी और 14 मास किया था वो, 3.5 घंटा रोज करो तब जाके 108 बनता है। अगर कभी कम हो गया अगले दिन बढ़ा लो कभी किस तरीके, लेकिन लास्ट एंड 108 पे। तो इतना रस आया। फिर मैं उसके बाद तो काफी वर्षों तक, आज तक भी इस साल भी हर महीने 108 घंटा प्रति मास जरूर योग करते हैं। तो उसमें कई बार बहुत सेवाएं होती हैं जहां जाते हैं नहीं मिलता टाइम, थोड़ा बहनों को क्या कहें योग कर, परंतु आगे पीछे कसर निकाल लेते हैं। कभी ट्रेन में जा रहे हैं तो फिर 4-5 घंटा इकट्ठा करेंगे, कभी किस टाइम करेंगे, कभी चाहे रात चाहे सुबह जल्दी 2 बजे उठ के, लेकिन लास्ट टोटल इस तक पहुंचाना, ये पक्की प्रतिज्ञा की हुई। तो थोड़ा मैंने देखा प्रतिज्ञा कर लेते हैं ना फिर जो है सफल होते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं, केवल 3 घंटे का आपसे गिफ्ट लेना चाहेंगे। जो कहते हैं 3 घंटा जरूर करेंगे अपने कल्याण के लिए शक्तिशाली योग, हाथ खड़ा करो करो करो, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन, निभाना है इसको बाबा। आप देखना ये आपके लिए शिव मंत्र हो जाएगा। कोई आत्मा दिन में शक्तिशाली 3 घंटा योग के करे, उसको तो माया छू नहीं सकती, माया एकदम भाग जाएगी उससे दो। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। समय पूरा हुआ तो वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।